नमस्कार शिवोहम साहित्यिक मंच से जुड़े हुए सभी साहित्यिक श्रोताओं को मैं भावना तिवारी बहुत बहुत सादर प्रणाम करती हूँ, उनका अभिनंदन करती हूँ। और जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि शिवोहम साहित्यिक मंच के माध्यम से हम अपने पुरखों को इस पितृ पक्ष में स्मरण कर रहे हैं, उनके उनके गीत उनकी रचनाओं का पाठ कर रहे हैं। और यथासंभव हमने प्रयास किया है कि जो भी रचनाकार जिनको हम स्मरण करें उनका कोई ना कोई परिवार का व्यक्ति यहाँ पर आए और उनके संस्मरण साझा करे, क्योंकि ये सत्य है कि जितना निकटता से एक पारिवारिक व्यक्ति पुत्र या पुत्री उसे समझ सकता है, उसकी बातों को जान सकता है, उतना एक सामान्य व्यक्ति उसे नहीं समझ सकता। तो आज धरोहर श्रृंखला की इस कड़ी में हमारे साथ आदरणीय देश के बहुत जाने माने साहित्यकार, व्यंगकार, कवि, गीतकार आदरणीय डॉक्टर प्रवीण शुक्ल जी हमारे मध्य हैं। उनका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, बहुत बहुत वंदन करती हूँ। और आज वे हमारे मध्य अपने पिता कीर्ति शेष ब्रज शुक्ल घायल जी के संस्मरण, उनकी रचनाएं हमसे साझा करेंगे। मैं प्रवीण जी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आदरणीय बहुत बहुत स्वागत है आपका, मैं प्रणाम करती हूँ आपको।
जी धन्यवाद, बहुत बहुत
प्रवीण जी
धन्यवाद भावना
आप मुझे सुन पा रहे हैं?
जी। जी बिल्कुल, आपकी आवाज आ
डॉक्टर
रही है।
प्रवीण जी,
आप मुझे सुन पा रही हैं? मेरी
आप
आवाज पहुंच रही है आप तक?
जी जी अभी 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 पहुंच रही है। मैं आपका शिवोहम साहित्यिक मंच पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। पुष्प गुच्छ हमारे साथ नहीं है, लेकिन आप मेरे शब्दों के सुमन आपको अर्पित करती हूँ, आपका स्वागत करती हूँ।
जी
और
धन्यवाद।
दर्शकों से मैं विदा लूंगी, क्योंकि ये पूरा मंच आपको समर्पित करती हूँ, पूरा ये क्षेत्र आपका है। हम लोग ब्रज शुक्ल घायल जी के स्मृतियों से लाभान्वित होना चाहते हैं, उनकी प्रेरणाएं उनकी रचनाएं हम सब सुनेंगे। और स्वागत करती हूँ आपका, और पूरा मंच अब आपके हवाले।
जी धन्यवाद। सबसे पहले मैं शिवोहम साहित्यिक मंच को और मैं आपके बीच जुड़ा हुआ हूँ इस समारोह में अपने पिताजी की यादों को आपसे साझा करने के लिए। मेरे पिताश्री ब्रज शुक्ल घायल जी, जो घायल नाम से कविताएं भी लिखते थे और पूरी दुनिया में जाने जाते थे अपनी साहित्यिक सेवाओं के लिए, और उन साहित्यिक सेवाओं के लिए जिनके कारण उन्होंने अनेक साहित्यिक मंचों की स्थापना की। तो ऐसे मेरे पिताश्री की यादें आज मैं आप सबके सम्मुख साझा करना चाहता हूँ, साझा कर रहा हूँ। मैं भावना को बहुत बधाई हृदय की समस्त गहराइयों के साथ इसलिए भी देता हूं कि एक अनूठी श्रृंखला उन्होंने प्रारंभ की धरोहर के नाम से, और शिवोहम के इस मंच से अनेक कवि पुत्रों को उन्होंने आमंत्रित किया जिन्होंने अपने पिता की यादें साझा की। अनेक वत्सल जराई बंद कर दो बेटा। अनेक जूनियर कवियों को बुलाया जिन्होंने अपने सीनियर कवियों की यादें साझा की। तो मुझे लगता है कि इस पितृपक्ष को एक उन्होंने सार्थक आयाम देने का कार्य किया। इसके लिए शिवोहम साहित्यिक मंच को, भावना जी को और इससे जुड़े हुए तमाम लोगों को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। मेरे पास भी भावना जी का फोन आया और उन्होंने कहा कि आपके पिताश्री की यादें आपके माध्यम से हम साझा करना चाहते हैं। मैं उनकी कुछ यादें आपके बीच आज बांटना चाहूंगा। मेरे पिताश्री ब्रज शुक्ल घायल जी मेरे जन्म से भी पहले साहित्यिक आयोजन करवाने का उनको रुचि थी, एक उन्हें शौक था। पिलखवा में उनका जन्म हुआ, शुक्ल परिवार है हमारा, और गाजियाबाद जिले में दिल्ली के बहुत नजदीक, लगभग दिल्ली से 40-42 किलोमीटर की दूरी पर एक कस्बा है जो अपने हैंडलूम के कार्य के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। चादरें बनती हैं, खेस रजाइयाँ बनती हैं और तमाम इस तरह के कार्य वहाँ संपादित होते हैं। वहाँ की हैंडलूम की बनाई हुई चीज़ें पूरी पूरी दुनिया में जाती हैं, उसी कस्बे में मेरे पिता श्री ब्रज शुक्ल घायल जी का जन्म हुआ। मदन लाल शुक्ल जी और रामकली देवी जी के घर में मेरे दादा मदन लाल शुक्ल और मेरी दादी रामकली जी, माता जी आप भी आइए सुन लीजिएगा इधर बैठकर, उनके घर में मेरे पिताश्री का जन्म हुआ। चार भाई और एक बहन मेरे पिताश्री थे। सबसे बड़े नंबर पर महेंद्र शुक्ला जी थे, दूसरे नंबर पर मेरे पिताजी ब्रज कुमार शुक्ला जी, तीसरे नंबर पर विनोद शुक्ल जी, चौथे नंबर पर मेरे एक चाचा थे जो विवाह से पूर्व ही उनका आकस्मिक देहांत हो गया था, सुभाष शुक्ल जी, और एक मेरी बुआ थी जिनका नाम उर्मिला था। तो एक ऐसे चार भाइयों और एक बहन के परिवार में पिताजी पिलखवा में पैदा हुए। मुझे मकान नंबर याद है आज भी, 232 मोहल्ला शुक्लान, पिलखवा गाजियाबाद, ये हमारा पता होता था। और उस भरे पूरे परिवार में मेरे तीन बाबा एक साथ रहते थे। पिताजी ने ये बताया कि जो उनकी दादी थी जिनका नाम पिताजी बताते थे कि बिरमा देवी था, वो दादी पिताजी को बहुत प्यार करती थी। ब्रज शुक्ल घायल उनका नाम तो उस अपने मेरे पिताजी यानी अपने पोते बिरजू को दादी बहुत प्यार करती थी और उनके लिए मिठाइयां छुपा कर रखती थी अपने तकिए के नीचे, ऐसा पिताजी बताते थे। और उस भरे पूरे परिवार में पिताजी ने साइंस से, हापुड़ में कॉलेज था एसएसबी कॉलेज, उस कॉलेज से उन्होंने अपनी बीएससी की पढ़ाई पूरी की, साइंस से पढ़ाई की, लेकिन हिंदी के प्रति उनका रुझान उस समय से ही था और अंत तक रहा। अनेक लोगों के द्वारा वो सम्मानित हुए, मॉरीशस के राजदूत ने उन्हें सम्मानित किया, दिल्ली के महापौर महेश चंद शर्मा जी ने सम्मानित किया, अनेक संस्थाएं अनेक अवसरों पर, कॉस्मोस ग्रुप ऑफ एजुकेशन से वो सम्मानित हुए, भगवान परशुराम मंच से सम्मानित हुए, और वो क्या सम्मानित हुए, उनके कार्य सम्मानित हुए। 1967 में उन्होंने, आप समय जोड़कर देखिएगा तो आपको पता लगेगा, ये मैं आपसे 53 वर्ष पहले की बात कर रहा हूँ, एक संस्था बनाई थी जिसका नाम था साहित्य संगम पिलखवा, अपने कुछ मित्रों के साथ। बाद में उन्होंने दिल्ली में एक संस्था बनाई, दिशा साहित्य संस्था दिल्ली, उसके प्रचार सचिव के रूप में भी उन्होंने कार्य किया। साहित्य संगम गोंडा दिल्ली के भी वो संयोजक रहे। दिल्ली हिंदी साहित्य सम्मेलन महामना मंडल से भी उन्होंने एक पदाधिकारी के रूप में कार्य किया। भारतीय साहित्यकार मंच पिलखवा, उसके वो संस्थापक और महासचिव रहे, और बहुत समय तक उन्होंने पिलखवा में भारतीय साहित्यकार मंच से साहित्यिक गतिविधियों को प्रोत्साहित किया, पुष्पित किया, पल्लवित किया। ऐसे ऐसे कार्यक्रम आयोजित करवाए जो आज भी मेरे मन मस्तिष्क में अंकित हैं। उस समय में पिलखवा में उनके संयोजन में गोपाल दास नीरज जी, दादा भवानी प्रसाद मिश्र जी, सोम ठाकुर जी, काका हाथरसी जी, अनेक कवि गंगा शरण त्रषित जी, डॉक्टर हरिओम पमार जी, अशोक चक्रधर जी, वो सब उपस्थित होते रहे और पिलखवा वासियों को अनेक बार पिताश्री के संयोजन में काव्य पाठ करने का अवसर प्राप्त होता था और अनेक बार उन्हें काव्य पाठ सुनने का भी अवसर प्राप्त होता था। तो ऐसे पिताश्री की साहित्यिक गतिविधियों को मैंने बचपन से देखा और एक बच्चे के रूप में, मैं बाल श्रोता के रूप में उन तमाम समारोहों में उपस्थित रहता था और बहुत सारे कवियों को वहां बैठकर सुनता था। तो उस समय से ही मेरे भीतर कविता के प्रति एक अभिरुचि प्रारंभ हो गई। मैंने कहा भी एक बार कि यदि मेरे सिर पर मेरे पिताश्री ब्रज शुक्ल घायल जी का साया ना होता, उनका हाथ ना होता, उनकी मोहब्बत ना होती, वंशिका थोड़ा बेटा लाइट खोल दो, रोशनी और बढ़ जाएगी, उनकी मोहब्बत ना होती और तो मैं कुछ भी होता जीवन में, लेकिन मुझे लगता है कि शायद मैं कवि प्रवीण शुक्ल ना होता। मेरी माता श्री रजनी शुक्ला जी और पिताजी, मैं तो उस समय बच्चा था, और हम भी 6 भाई बहन थे, पिलखवा में ही रहते थे, मकान नंबर 232 शुक्लान में, मोहल्ला शुक्लान में। उस समय से ही कवियों का आना जाना लगातार घर पर होता था और पूरा परिवार एक कवि परिवार से एक अभिन्न अंग के रूप में जुड़ा रहता था। आज मुझे पिताजी के बारे में बात अधिक करनी है, तो मैंने बताया आपको कि अनेक साहित्यिक संस्थाओं के पदाधिकारी रहे, वो अनेक सामाजिक संस्थाओं से जुड़े रहे, प्रगतिशील पूर्वी दिल्ली नागरिक परिषद, उसके प्रचार सचिव के रूप में उन्होंने कार्य किया, मानव चेतना संगठन दिल्ली की एक संस्था थी जो बहुत सारे धार्मिक क्रियाकलाप कराती थी, उस मानव चेतना संगठन के माध्यम से भी पिताजी उसके उपाध्यक्ष थे, अनेक बार श्रीमद् भागवत कथाएं, अनेक बार तुलसी जयंती के समारोह पिताजी ने आयोजित किए। एक साइंस के अध्यापक के रूप में वो कार्य करते थे और वहां भी उन्होंने शिक्षक समुदाय से जुड़कर कार्य किया, दिल्ली प्रशासन स्कूल शिक्षक संगठन के अध्यक्ष के रूप में भी उन्होंने कार्य किया। सबसे महत्वपूर्ण जो उनके मन में एक फक्कड़ फकीर बैठा हुआ था, वो निराला जी से प्रभावित होता था, इसलिए प्रतिवर्ष महाकवि निराला जी की जयंती वो आयोजित करते थे, स्वर गंगा कवि सम्मेलन, प्रेमचंद जयंती, तुलसी जयंती, शिक्षक दिवस कवि सम्मेलन, हिंदी दिवस समारोह, मालवीय जयंती, नववर्ष कवि सम्मेलन आदि एक पूरी श्रृंखला थी। 2-3 महीने बीतते थे और पिताजी फिर एक साहित्यिक सेवा में लग जाते थे, क्षेत्र के लोगों को एकत्र करते थे, बाहर के कवियों को बुलाते थे, और मैंने देखा अनेक बार कि उन्हें खुद की कविताएं सुनाकर भी वो संतोष नहीं मिलता था जितना संतोष उन्हें दूसरे कवियों की कविताएं सुनवाकर मिलता था। इसकी ब्राइटनेस बढ़ सकती है थोड़ी सी, दूसरे कवियों की कविताएं सुनवाकर मिलता था। अनेक उन्होंने कवियों को, रचनाकारों को सम्मानित करवाया। और देखिए, हाँ, मैंने बताया कि जो प्रमुख समारोह वो प्रतिवर्ष आयोजित करवाते थे, कुछ मैं आपको बताता हूँ जानकारियाँ उनके बारे में भी। निराला श्री सम्मान एक भव्य समारोह होता था, देश के अब तक अनेक लब्ध प्रतिष्ठित कवियों को इस सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। एक भव्य कवि सम्मेलन पिताजी करवाते थे और एक रचनाकार को निराला श्री सम्मान से वो सम्मानित करते थे। यदि मैं उस सम्मान से सम्मानित होने वाले कवियों की सूची आपको बताऊं तो आप आश्चर्य में पड़ जाएंगे। डॉक्टर श्याम सिंह शशि जी, हरिप्रसाद शास्त्री जी, पद्मश्री यशपाल जैन जी, पद्म विभूषण विष्णु प्रभाकर जी, बलवीर सिंह करुण जी, बाल कवि बैरागी जी, डॉक्टर हरिओम पमार जी, अशोक चक्रधर जी, संतोषानंद जी, डॉक्टर उर्मिलेश शंखधार जी, ओम प्रकाश आदित्य जी, कृष्ण मित्र जी, श्री जगदीश सोलंकी जी, डॉक्टर शंकरदेव अवतरे जी, श्री माणिक वर्मा जी, डॉक्टर कुंवर बेचैन जी, पद्मश्री डॉक्टर सुरेंद्र दुबे जी, उदय प्रताप सिंह जी, श्री दिनेश रघुवंशी जी, श्री विनीत चौहान जी आदि कवियों को निराला श्री सम्मान से पिताश्री ने सम्मानित करवाया। और ये एक बहुत भव्य कवि सम्मेलन के साथ हमारे क्षेत्र का सर्वाधिक लब्ध प्रतिष्ठित समारोह होता था, निराला श्री सम्मान समारोह। और सबसे खास बात मैं ये बताता हूँ कि पिताजी ने ये निर्णय लिया था कि इस समारोह में जिस कवि को सम्मानित किया जाएगा उसे पहले वो 5100 रुपये की राशि देते थे, फिर 11,000 की, बाद में 21,000 रुपये की राशि पिताश्री प्रदान करने लगे। और उस राशि को वो किसी से एकत्र नहीं करते थे, किसी से चंदे के रूप में नहीं लेते थे। जब तक उनकी सेवा थी तब तक उस सेवा की सर्विस के पैसों से उसका भुगतान करते थे, सम्मान राशि को देते थे, एक लिफाफे में रखकर रचनाकार को। 2004 में वो सेवानिवृत्त हो गए तो उसके बाद उन्होंने उस क्रम को नहीं भंग किया और उन्होंने कहा कि बच्चे सब मेरे लायक हैं, अपना कमा खा रहे हैं, कार्य उनका व्यापार चल रहा है, जो भी उनकी जीवन पद्धति है, लेकिन ये सम्मान राशि दी जाएगी। और अपनी जो पेंशन उनकी आती थी उसकी राशि में से वो प्रतिवर्ष एक कवि को वो सम्मान राशि निराला श्री सम्मान के नाम पर, निराला जी के नाम पर उस सम्मान राशि को हाथ जोड़कर विनत होकर प्रदान करते थे कि आपने आकर हमें कृतार्थ किया। एक समारोह वो करवाते थे शिक्षक और हिंदी दिवस, हिंदी सेवा सम्मान समारोह। हमारे क्षेत्र में ऐसे जो शिक्षक रहे जो साहित्य से भी जुड़े हुए थे और शिक्षा से भी जुड़े हुए थे, तो 5 सितंबर को पिताश्री ने अनेक वर्ष तक डॉक्टर राधाकृष्णन जी की याद में इस समारोह का संयोजन किया और अनेक कवियों को जो शिक्षक थे उन्हें भी इस कार्यक्रम में सम्मानित करवाया। मालवीय जी के प्रति उनके मन में अटूट आस्था थी और दादा भवानी प्रसाद मिश्र, पंडित गोपाल प्रसाद व्यास जी, डॉक्टर कुंवर बेचैन जी, नित्यानंद शर्मा जी और कृष्ण मित्र जी को उन्होंने महाकवि मदन मोहन मालवीय सम्मान प्रदान किया। शिक्षक कवि के साथ साथ उनका एक पत्रकार का भी स्वरूप था। हमारे क्षेत्र से एक दैनिक समाचार पत्र प्रकाशित होता था जिसका नाम था दैनिक वंदे मातरम। उसमें पिताजी ने बहुत समय तक पत्रकारिता की, क्षेत्र के समाचार वहां पहुंचाए, अपनी कविताएं वहां निरंतर प्रकाशित करवाई और उसके बाद में अभी तक क्राइम टाइम्स में भी उन्होंने एक संवाददाता के रूप में लंबे समय तक, मुझे लगता है कि जब तक वो सशरीर धरती पर थे, आजीवन उन्होंने वहां भी संवाददाता के रूप में कार्य किया। 200 से अधिक कवि सम्मेलन और कवि गोष्ठियों में उन्होंने काव्य पाठ किया, उनका संयोजन किया, विभिन्न साहित्यिक पत्र पत्रिकाओं में उनकी रचनाएं सम्मानित हुई और अनेक लोगों को उन्होंने आमंत्रित किया। ये तो मैंने आपको अपने पिताश्री के जीवन के बारे में बताया। एक ऐसा व्यक्ति जिसने साइंस से पढ़ाई की और बाद में विज्ञान और गणित के अध्यापक के रूप में कार्य किया, लेकिन उनकी आत्मा की आवाज़ हिंदी की सेवा से मैं रमती थी, हिंदी की सेवा में उनकी आत्मा आनंदित होती थी। और अनेक मैं बताता हूँ आपको कि मुख्यमंत्री दिल्ली की शीला दीक्षित रहीं तो उन्हें भी आमंत्रित किया। साहब सिंह वर्मा जी दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, वो भी उनके समारोहों में आए। हमारे डॉक्टर अशोक वालिया जी स्वास्थ्य मंत्री रहे दिल्ली सरकार में और बाद में पिताजी का एक भव्य अभिनंदन समारोह हुआ था, शोध संस्था ने वो अभिनंदन समारोह करवाया था। जीवन पर्यंत हिंदी से भी सम्मान उन्हें प्रदान किया गया जिसमें हमारे वर्तमान समय के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी की उपस्थिति रही और उन्होंने कहा भी था उस समारोह में, क्योंकि मनीष जी भी पिलखवे के रहने वाले हैं, कि आज मैं किसी कवि के सम्मान समारोह में नहीं आया हूँ, मैं अपने चाचा श्री के सम्मान समारोह में आया हूँ। तो सबका बहुत उन्हें असीम प्यार मिला, स्नेह मिला। और पिताजी की इस साहित्यिक साधना के पीछे भी और मेरी साहित्यिक साधना के पीछे भी मेरी माता श्री का बहुत बड़ा योगदान है। रजनी शुक्ला जी उनका नाम है, बहुत सारे लोग उनसे, सारा कवि समुदाय परिचित है। आज भी बहुत सारे कवियों का घर में आना जाना रहता है, पिताश्री के समय पर भी बहुत कवियों का आना जाना रहता था, लेकिन पिताजी चूंकि बाहर के कार्यों में व्यस्त रहते थे, लेकिन घर की जिम्मेदारी, माताजी ने कभी किसी को ये बोध नहीं होने दिया कि वो किसी अनजान जगह पर हैं। जब पुराने समय में मेरे मंच पर आने से पहले पिताजी के साथ ही आते थे उस समय भी, और आज मेरे मित्र आते हैं उस समय भी, घर में एक बहुत ही पारिवारिक वातावरण सबको मिला, जिसका श्रेय निश्चित रूप से मेरी माता श्री को जाता है और पिताजी के दिए गए संस्कारों को जाता है। मैं बता रहा था आपको उनके जीवन के बारे में। एक पत्रिका प्रकाशित की गई थी ट्रू मीडिया के द्वारा, पिताजी के बारे में उनका अभिनंदन हुआ था। देखिए ये पत्रिका मैं आपको दिखाता हूँ, उन्होंने ट्रू मीडिया ने एक अंक प्रकाशित किया ब्रज शुक्ल घायल जी के जीवन के संदर्भ में, उनके कृतित्व और व्यक्तित्व के बारे में। मेरे भाई ओम प्रकाश जी ने और विनयशील चतुर्वेदी जी ने अपनी साहित्यिक संस्था सोच के माध्यम से उनको जब जीवन पर्यंत सम्मान प्रदान किया, उस समय पर इस पत्रिका का विमोचन किया गया था। तो मैंने इस पत्रिका में भी ये बताया कि मेरे पिताश्री में जो कुछ बहुत अलग तरह की विशेषताएं थीं जो मुझे हमेशा आज भी आप्लावित करती हैं, उनकी याद दिलाती हैं और उनके बारे में सोचता हूं तो गहन में ऐसी विचारधारा में चला जाता हूं। मुझे लगता है कि उनके जैसा व्यक्ति होना बहुत ही मुश्किल है। मुश्किल क्या, कई बार लगता है कि असंभव है। उनकी कुछ विशेषताएं मैं आज आपसे साझा करता हूं इस समारोह में शिवोहम के इस साहित्यिक ट्रस्ट थे। उनकी सबसे पहली विशेषता ये थी मित्रों कि उनके भीतर एक फक्कड़ फकीर बैठा हुआ था। धन के आकर्षण ने उन्हें कभी भी आकर्षित नहीं किया। उन्होंने यदि उनके सामने दो चीजें आ गईं, एक धन आ गया और एक मन आ गया, तो पिताजी ने हमेशा मन को पहले नंबर पर रखा, धन को उन्होंने हमेशा दूसरे नंबर पर रखा। वो कहते थे कि सबका प्रेम मैंने हासिल कर लिया, सबकी मोहब्बतें हासिल कर लें तो मुझसे बड़ा धनवान आदमी इस धरती पर कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। उनकी दूसरी विशेषता ये थी कि आप उनके साथ बैठिए, उनसे बात करिए, उनसे आप कवियों की बात करेंगे, कविताओं की बात करेंगे, तो पिताश्री से आप घंटों बात कर सकते थे। प्रमोद तिवारी जी मेरे घर पर आए तो प्रमोद जी की कविताएं वो घंटों तक सुनते रहे। बलराम श्रीवास्तव आए, उन दिनों पिताजी थोड़े अस्वस्थ थे तो उनकी कविताएं सुनी। एक दिन अर्जुन सिसोदिया ने मुझे बताया कि मैं आया था घर पर और प्रवीण मैंने चाचा जी को बहुत सारी कविताएं सुनाई, वो कविताएं भी सुनाई जो प्राय मैं मंचों पर नहीं सुनाता हूं। तो उनकी आत्मा में कविता के प्रति, काव्य के प्रति एक ऐसा मन उनका रमा रहता था, ऐसा एक आनंद रहता था कि वो जैसी कविता के शब्द उनके कानों में पड़ते थे उनके चेहरे पर चमक आनी शुरू हो जाती थी। मेरे बड़े भाई समान निर्दोष शर्मा जी हैं जो हमारे परिवार के अभिन्न अंग रहे हैं। पिताजी जब अपने बाद के दिनों में अस्पताल में थे, क्या नाम था उसका, करोल बाग में हॉस्पिटल था, बीएल कपूर अस्पताल, तो वहाँ भी वो निर्दोष जी उनके पास जाते थे मिलने के लिए, तो उनको टेलीफोन पर अस्पताल के बेड पर कविताएं सुनवाते थे और उनकी बीमारी कुछ क्षण के लिए दाएं बाएं चली जाती थी, उनसे दूर चली जाती थी। तो मैंने आपको बताया कि आप उनसे कवियों के बारे में, कविताओं के बारे में घंटों बात कर सकते थे, लेकिन जैसे ही आप उनसे व्यावसायिक बात करते थे, उनसे कोई पिताजी कोई प्लॉट लेना है, कोई प्रॉपर्टी की बात करनी है, या कोई मकान हमारे दाएं बाएं बिक रहा है क्या हम उसे ले लें, तो वो कहते थे कि इस बारे में अपनी माँ से बात करो, या फिर वो उठकर चले जाते थे या करवट बदल कर दूसरी तरफ सोने की प्रक्रिया में आ जाते थे। और उनकी कोई रुचि नहीं थी कि मेरे दिल्ली में कोई 5-7 मकान हो, मेरा कोई बहुत भव्य महल हो, मेरे पास कोई बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां हो। वो संतोषी जीव थे और हमेशा ये मानते थे कि जो प्रभु ने दे रखा है इसमें संतुष्ट रहो और खुश रहो और सब लोगों को खुश रखने का प्रयास करो। उनकी तीसरी विशेषता आपको बताता हूँ कि पिताजी को कुछ विशेष पकवान बनाने का भी शौक था। कभी कभी जब सीजन आता था तो वो खुद अपने हाथों से गाजर का हलवा बनाते थे। और खाली ये नहीं था कि वो गाजर का हलवा वो बस सब बाकी तैयार कर देंगे और वो बना देंगे, वो खुद गाजर लेकर आते थे, कद्दूकस में गाजरों को कसते थे, कढ़ाई चढ़ाते थे उसमें, यदि घर में कोई और दूध नहीं लाता था तो खुद वो दूध लेकर आते थे डेयरी से या जहाँ से भी उन्हें लाना होता था। बाकायदा अपने हाथ से चाकू लेकर वो ड्राई फ्रूट्स काटते थे, छोटे छोटे टुकड़े करते थे, बादाम के, काजुओं के, किशमिश लेकर आते थे और अपने हाथ से उस गाजर के हलवे को पूरा बनाकर तैयार करके और फिर उसे छोटी छोटी कटोरियों में रखकर उस पर ड्राई फ्रूट डालकर सबको खुद अपने हाथ से देना उनका शगल रहा। माता जी को एक कटोरी में वो हलवा देकर आते थे, मेरी धर्मपत्नी संजना को, बच्चों को, और कहते थे सबको बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगा, थोड़ा थोड़ा खाओ, कई दिन तक ये हलवा खाना है, और कई दिन तक फिर वो नियमित उसे गर्म करके सबको खिलाते थे। तो ये भी उनका एक अलग तरह का एक शौक था, एक उन्हें अलग तरह का उनका, खाली हमारे परिवार को ही नहीं सबको खाने पिलाने का शौक था। कोई उस दौरान घर भी आता था तो उसके लिए भी वो पहुँच जाते थे, देखिए मैंने ये हलवा बनाया है और आप खाइएगा, मैं अपने हाथ से बना हुआ कुछ आपको खिलाना चाहता हूँ। मैंने बता दिया कि चौथी तो बात यही है कि कवि सम्मेलन, साहित्यिक अनुष्ठान, कवियों को बुलाना, उनके साथ रहना, यही उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा शगल था, सबसे बड़ा शौक था। बच्चों में वो बच्चे बन जाते थे और बड़ों के साथ बड़े बन जाते थे। शादी विवाहों में कई बार डांस भी करते थे, कई बार उनका जैसा मन करता था वैसा आनंद के क्षण बच्चों के साथ खूब मिलकर रहना, और अपने पोते पोतियों को, मेरी बिटिया वंशिका को, मेरे बेटे वत्सल को खूब उनका स्नेह मिला और खूब उनके साथ उन्होंने प्रेम के साथ अपना समय गुजारा। छठी विशेषता मैं आपकी बताता हूँ कि कभी कभी जल्दी उठ जाते थे, किसी को परेशान नहीं करते थे, घर वालों को भी नहीं जगाते थे, रसोई में जाकर खुद चाय बनाते थे, और वो पर चाय बनाने के बाद कभी वो माताजी के पास चली जाती थी चाय की, लो टीनू की मम्मी, मेरे घर का नाम टीनू है, पापा जी ने कहा, उन्हें हमेशा टीनू की मम्मी कहा, प्रवीण शुक्ल की मम्मी कभी नहीं कहा, कि लो चाय पियो। और कभी कभी संजना के पास भी, जो मेरी धर्म पत्नी है, कि ले बेटा मैंने आज चाय बना दी है तो तू भी ग्रहण कर ले, ऐसा उनका व्यक्तित्व था, बिल्कुल सहज। कोई उनको ये नहीं था कि मैं बड़ा हूँ, मैं ससुर हूँ, मेरा एक अलग किरदार है, एक सहज सरलता का व्यक्तित्व, जहाँ छोटों के साथ वो छोटे हो जाते थे, बड़ों के साथ बड़े हो जाते थे। सातवीं विशेषता उनकी ये है पिताश्री की, कि उन्होंने अपने जीवन में रिश्तों को बहुत महत्व दिया, हमेशा महत्व दिया। आज भी मेरी, जब तक पिताजी रहे, 1 नवंबर 2017 को उनका देहांत हुआ, तो उस समय तक भी उनकी मौसी की बेटी हैं मेरी बुआ, सरोज बुआ कहते हैं हम उन्हें, घर के बहुत पास हैं, हर राखी पर उनके पास जाना, उनसे राखी बंधवा कर आना, उनसे बतियाना, एक संवाद बना कर रखना, और जब तक वो हाथ पैरों से स्वस्थ रहे, आने जाने लायक रहे, मेरी बुआ खुर्जा के पास रहती थी, तो सावन के महीने में वो बाकायदा बुआ के लिए, जो हम उसे सावन की कोथली कहें या शगुन कहें या जो भी कहें, तो उनका मन करता था कि मैं अपनी बहन के पास भी जाऊं और उसे शुभकामनाएं देकर आऊं। अपनी आयु के, मैं समझता हूं कि लगभग 74 वर्ष की आयु में उनका देहांत हुआ, और 70 वर्ष तक वो आने जाने की स्थितियों में थे, 70, 71, 72 तक, तब तक वो हर सावन में बुआ के पास भी मिलने के लिए जाते थे। बहुत बन ठन कर रहने की कोशिश उन्होंने कभी नहीं की, सादा जीवन, उच्च विचार, इसी जीवन शैली को अपनाया और हमेशा इसी जीवन शैली को अंत तक अपना कर रखा उन्होंने। प्रारंभ से ही समाज के अति विशिष्ट व्यक्तियों के साथ उनका उठना बैठना था, संस्था में अनेक लोगों को उन्होंने जोड़ा, लेकिन किसी के भी व्यवहार से वो प्रभावित होते थे, किसी के भी विचारों से प्रभावित होते थे, किसी के धन के वैभव से, उसकी शक्ति संपन्नता से वो कभी प्रभावित नहीं हुए। और जैसे जल में रहकर भी आप जल के प्रभाव में ना आए, कैसा अनूठा उनका व्यक्तित्व रहता था, और सबके साथ मित्रता का, प्रेम का रिश्ता उन्होंने जिया। इसलिए जब उनका देहांत हुआ तो हजारों लोग थे जो उन्हें श्रद्धा सुमन समर्पित करने के लिए हमारे क्षेत्र के उस स्थान पर, जहाँ हमने उनकी याद में श्रद्धा सुमन समारोह आयोजित किया था, उपस्थित रहे, और लोगों के बैठने की भी जगह कम पड़ गई थी। एक और विशेष बात जो मैं आपसे आज साझा करना चाहता हूँ इस समारोह के, शिवोहम के पृष्ठ के माध्यम से, धरोहर के इस कार्यक्रम में, कि पिताश्री की ईश्वर के प्रति बहुत ही अगाध आस्था थी, बहुत ईश्वर को मानते थे, और जब जब जीवन में कोई भी विचलित होता था, मैं, मेरे परिवार का कोई अन्य व्यक्ति, या कोई घटना या दुर्घटना हो जाती थी, तो वो ये कहते थे कि ईश्वर को ऐसा ही मंजूर था, इसलिए ऐसा हुआ। और फिर वो एक तुलसीदास की चौपाई की दो पंक्ति सुनाते थे, कहते थे, लाभ हानि जीवन मरण, यश अपयश विधि हार। तो ये पंक्तियां उन्होंने हमेशा अनेक बार मुझे भी सुनाई और पूरी दुनिया को सुनाई। अपने बारे में मैं ये बताऊं कि दोस्तों, मैं आज बहुत भावुक भी हूं, इस समय धरोहर के इस पृष्ठ पर पिताश्री के बारे में बातचीत करते हुए, कि उनके आशीषों की छाया के कारण ही शायद आज मैं इस रूप में आप मुझे सुन रहे हैं, डॉक्टर प्रवीण शुक्ल के रूप में। पिताजी, जब मैं कविताएं लिखने लगा था तो मैंने 10वीं में कविताएं लिखनी शुरू कर दी थी, प्रारंभ में मैं उन्हें बताता नहीं था, लगभग 4-5 वर्ष तक मैंने पिताजी से भी छुपा कर रखा कि मैं कविताएं लिखता हूं। बाद में उन्हें पता लगा तो एक दो गोष्ठियों में उन्होंने कहा कि प्रवीण तुम्हें कविता पढ़वा देता हूं, तो मैं कहता था कि नहीं, मैं कविता नहीं पढ़ूंगा, माइक पर आने से, बोलने से घबराता था, डरता था। और मैंने कहा कि देखिए मैं सामने श्रोताओं में रहूंगा, लेकिन यदि आपने कवि के रूप में मेरा नाम पुकारा तो मैं सभागार से चुपचाप उठकर चला जाऊंगा और मैं काव्य पाठ नहीं करूंगा। लेकिन धीरे धीरे मेरा भी आत्मविश्वास बढ़ा और कविताएं भी मैंने लिखनी शुरू की और उनका पाठ भी किया। पिताजी के एक अग्रज थे हरिप्रसाद शास्त्री जी, जिन्हें मेरे पिताजी अपने पिता के समान ही मानते थे। वो पिताजी के कार्यक्रम में आए थे तुलसी जयंती के समारोह में। उन्होंने घर पर मेरी कविताएं सुनी। उस समय तक मैं मंचों पर नहीं आया था, ये बात है सन 89 की, 1989 की। तो उन्होंने मुझसे बहुत सारी कविताएं अलग अलग सुनी और फिर 24 जनवरी को गाजियाबाद में आयोजित होने वाले गाजियाबाद लोक परिषद के कवि सम्मेलन में मुझे आमंत्रित किया, जहां से मेरी अखिल भारतीय कवि सम्मेलन की यात्रा की शुरुआत हुई। पिताजी मेरी कविताओं को जो जो अखबारों में प्रकाशित होती थी, पिताजी के एक बड़े आत्मीय मित्र थे जिन्हें मैं ताऊ जी कहता था, नित्यानंद शर्मा। वो दैनिक हिंदुस्तान, जो दिल्ली से प्रकाशित होने वाला हिंदी का एक बहुत प्रतिष्ठित अखबार है, उसमें हफ्ते में मेरी एक कविता छापते थे। तो दोस्तों मैं ये बता रहा हूँ आपको कि मेरे पिताजी श्री मेरी उन कविताओं को जो छप जाती थी दैनिक हिंदुस्तान अखबार में, उन्हें काट कर एक फाइल में लगाते थे और वो फाइल आज भी मेरे पास है, जिसमें मेरी छपी हुई कविताएं जो पिताश्री ने वहाँ पेस्ट करके सुरक्षित रखी हुई थी, आज भी उनकी यादों के रूप में, धरोहर के रूप में मेरे पास है। वंदे मातरम अखबार आता था मौजपुर से, जिसमें मैं उन दिनों प्रतिदिन एक छक्का लिखता था। ये बात है 1988 से 1992 के बीच की, 6 लाइन की एक पंक्ति। जैसे वीपी सिंह जी की सरकार आई तो उस समय पर मैंने बहुत छक्के लिखे, ए बी सी डी भूल जा, कह खे गे भी भूल, बस बस्ता घर में टांग दे, नहीं खुले स्कूल, इस तरह की कविताएं, काका हाथरसी की शैली, वो 6 पंक्ति वाली। तो वो भी पिताजी के द्वारा डायरियों में, रजिस्टर में पेस्ट, बहुत सारी कविताएं आज भी उनकी धरोहर के रूप में वो छोड़कर गए हैं अपने पीछे। मेरे कवि सम्मेलन में बहुत व्यस्त हो जाने के बाद, लोकप्रिय हो जाने के बाद भी वो मुझसे नहीं पूछते थे कि मैंने कैसा काव्य पाठ किया और मैंने कितनी तालियां बजवाई या मेरा कैसा रूप स्वरूप रहा, नहीं पूछते थे मुझसे। लेकिन मेरे मित्र निर्दोष शर्मा जी ने मुझे बताया कि तुझसे नहीं पूछते तेरे बारे में, लेकिन अक्सर मुझसे पूछते हैं कि आजकल कवि सम्मेलनों में कैसा सुनाता है, कोई गलत बात तो नहीं बोलता है, कोई खराब कविता तो नहीं सुनाता, इसके प्रस्तुतिकरण में तो कोई कमी नहीं है। और कहते थे निर्दोष जी से कि इसको थोड़ा सा समझा कर रखना कि गलती ना करे और ये माँ सरस्वती का मंच है, अच्छी कविताएं सुनाए, अच्छा व्यवहार रखे और इसको मंदिर की तरह से माने, ऐसा मुझे निर्दोष जी ने कई बार बताया। और जब अस्वस्थ रहने लगे थे पिताजी, तो दिल्ली में मैंने बताया साहित्य प्रेमी मंडल की स्थापना कर ली थी उन्होंने 1984 में। बाद में एक दिन अपने सब मित्रों को बुलाया और बोले कि मैं गोष्ठी कर रहा हूं 15 अगस्त पर और इसके बाद इस संस्था को हम विराम बिंदु पर ले जाएंगे, इस संस्था का कार्यकाल समाप्त कर देंगे। तो दोस्तों मैं बताता हूं कि पिताजी की उस गोष्ठी के बाद में मेरे बड़े भाई समान, मेरे बहुत आत्मीय मित्र राजेश कुमार जी, जो कॉस्मोस ग्रुप ऑफ एजुकेशन के चेयरमैन हैं, उन्होंने मुझे और मेरे कुछ युवा मित्रों को बिठाया एक कमरे में और कहा कि देखिए चाचा जी के द्वारा स्थापित ये संस्था, जिसमें वर्षों तक चाचा जी ने कार्यक्रम करवाए हैं, ये संस्था समाप्त नहीं होगी, इस संस्था का कार्यकाल समाप्त नहीं होगा, अब चाचा जी अस्वस्थ हैं तो हम सब युवा लोग मिलकर आगे बढ़ेंगे और इस संस्था को आगे बढ़ाएंगे। तो हम सब गए थे पिताजी के पास और हमने कहा कि नहीं, ये अंतिम कार्यक्रम नहीं है इस संस्था का, ये कार्यक्रम और ये संस्था की गतिशीलता आगे बढ़ेगी और हम युवा लोग इसको लेकर चलेंगे, आप संरक्षक का उत्तरदायित्व निभाइएगा। तो दोस्तों मैं, मेरे पास शब्द नहीं है ये बताने के लिए कि कैसा संतोष का भाव, कैसा आनंद का भाव उनके चेहरे पर उस समय था। बाद में हमने लगभग 5-6 वर्ष तक लगातार साहित्य प्रेमी मंडल से समारोह आयोजित करवाए, तो पिताजी एक संरक्षक की भूमिका में, हमारे एक मार्गदर्शक की भूमिका में, हमें लगातार निर्देशित करते रहे और उनके आशीषों की छाया में साहित्य प्रेमी मंडल की यात्रा आगे बढ़ती रही। मैंने बताया आपको कि एक अनूठा व्यक्तित्व उनका रहा, अनेक कविताएं उन्होंने लिखी, अनेक कविताएं विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में उनकी प्रकाशित हुई, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जिसने सैकड़ों लोगों के अभिनंदन किए, सैकड़ों लोगों को सम्मानित किया, उन्होंने कभी भी किसी से ये कामना नहीं की कि कोई उनके गले में एक माला भी डाले या बदले में उनका कोई सम्मान हो या उन्हें कोई शॉल उड़ाया जाए या उन्हें कोई किसी अन्य रूप में उसका प्रतिदान करे, उसके बदले में अदले का बदला करे, ऐसी कामना उन्होंने जीवन में कभी भी नहीं की। 1990 में मैं मंच पर आ गया, कविताएं सुनाने लगा। पिताजी के बहुत सारे मित्र जिन्हें वो बाद में भी बुलाते थे, लेकिन एक भी उदाहरण ऐसा नहीं है कि जब उन्होंने किसी से ये कहा हो कि ये मेरा बेटा है डॉक्टर प्रवीण शुक्ल, तो मैं बाद में हुआ पीएचडी की, प्रवीण इसका नाम है और आप इसे बुलाइएगा, तो हमेशा उन्होंने समाज को देने का कार्य किया अपनी सद्भावनाओं से, अपनी साहित्यिक सेवाओं से, अपनी सामाजिक सेवाओं से, और बदले में कुछ भी कामना नहीं की। मुझे लगता है कि उन्होंने लोगों से कामना नहीं की, लेकिन ईश्वर ने उनके कार्यों को देखा और उनके उन सब कार्यों के प्रतिफल के रूप में माँ सरस्वती ने मुझ पर बहुत सारा आशीष अपना मुझे प्रदान किया। तो मैं मानता हूँ कि आज जो कुछ भी हूँ उसमें पिताश्री की आशीष छाया है और मेरी माताश्री के अनंत अखंड आशीर्वाद हैं। मैं अंत में पिताजी की कुछ कविताएं आपको साझा करता हूं, क्योंकि भावना जी ने कहा था कि इस समारोह में पिताश्री की कुछ कविताओं का पाठ भी करना है। मैं यहां इस समय आपके कमेंट्स नहीं पढ़ पा रहा हूं, क्योंकि ये कार्यक्रम जो हो रहा है, कौन सी वो कहलाती है जिस पर हम जुड़े हुए हैं, केवल मुझे एकाध कमेंट आपका नजर आ रहा है, लेकिन मैं जानता हूं कि तमाम लोग इसे देख रहे हैं, सुन रहे हैं। मैं पिताजी के कुछ दोहे आपको सुनाता हूं। वो दोहे कहते थे, और पूरी दुनिया में दुमदार दोहों के रूप में भी जाने जाते थे, दोहाकार के रूप में भी जाने जाते थे, और बहुत सारी कविताएं उनकी पहुंची लोगों तक। मैं सुनाता हूँ आपको उनके कुछ दोहे, सुनिएगा। मेरे पिताश्री ब्रज शुक्ल घायल जी, उनके दोहे मैं आपकी सेवा में प्रस्तुत करता हूँ। डॉक्टर राजीव राज, उनका कमेंट मुझे नजर आया है, राजकुमार रंजन जी, सत्यपाल सत्यम जी और सपना सोनी जी और तमाम लोग जो देख रहे हैं इस समारोह को, पीके आजाद जी, मैं और जिनके कमेंट मुझे नजर नहीं आ रहे उन सबका भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। और पिताजी के कुछ दोहे आपकी सेवा में मैं समर्पित करता हूँ। उन्होंने लिखा कि भाग दौड़ की जिंदगी कहीं ना मिलता चैन, भाग दौड़ की जिंदगी कहीं ना मिलता चैन, रिक्शा गाड़ी ट्रेन में घूम रहा है ब्रेन, रिक्शा गाड़ी ट्रेन में घूम रहा है ब्रेन। एक दोहा सुनिएगा उनका, ये दोहा मुझे भी बहुत पसंद है, आपको भी पसंद आएगा। छोड़ गांव का घर बड़ा, छोड़ गांव का घर बड़ा, रहता लेकर फ्लैट, कहता है मैं हो गया महानगर में सेट। छोड़ गांव का घर बड़ा, रहता लेकर फ्लैट, कहता है मैं हो गया महानगर में सेट। एक दोहा और सुनिएगा पिताजी का, ये उनकी जिंदगी का भी जो वो महसूस करते थे, उनकी उनके जीवन का की छाया इस दोहे में आ गई है। उन्होंने कहा कि नफरत करनी छोड़ दे, नफरत करनी छोड़ दे, कर ले सबसे प्यार, बस तेरा हो जाएगा यह सारा संसार, बस तेरा हो जाएगा यह सारा संसार। एक दोहा और सुनिएगा जो मुझे भी बहुत पसंद है, पिताजी का दोहा है ये, ब्रज शुक्ल घायल जी का, मेरे पिताश्री का, धरोहर के इस समारोह में आप तक पहुंचाता हूं। कि दुख से मत घबरा कभी, दुख से मत घबरा कभी, सुख इसमें ही खोज, दुख से मत घबरा कभी, सुख इसमें ही खोज, दुख से मत घबरा कभी, सुख इसमें ही खोज। एक मिनट, जरा टेक्निकल प्रॉब्लम आई है थोड़ी सी। दुख से मत घबरा कभी, सुख इसमें ही खोज, रैन चैन से काटकर सूरज उगता रोज, रैन चैन से काटकर सूरज उगता रोज। एक दोहा और सुनिएगा, ये भी उनकी पहचान का दोहा है। उन्होंने कहा कि संबंधों को तू कभी मत पैसे से तोल, पैसा कर का मैल है रिश्ते हैं अनमोल, पैसा कर का मैल है रिश्ते हैं अनमोल। एक दोहा उनका और सुनिएगा, शब्दों का संसार में मोल बड़ा अनमोल, शब्दों का संसार में मोल बड़ा अनमोल, बड़ बोला पन छोड़ कर तोल तोल कर बोल, बड़ बोला पन छोड़ कर तोल तोल कर बोल। एक दोहा उनका और मैं आपको सुनाता हूँ, लंबी श्रृंखला है, सैकड़ों दोहे उन्होंने लिखे, लेकिन मैं अंतिम दोहा आपको सुनाता हूँ। राजनीति के लिए उन्होंने कहा इशारे में कि हर दल में ही चल रही भीतर भीतर घात, हर दल में ही चल रही भीतर भीतर घात, नेता गण अब कर रहे गिरगिट को भी मात, नेता गण अब कर रहे गिरगिट को भी मात। तीन मुक्तक सुनिएगा जो बैठ जा बेटा, इस पर बैठ जा। तीन मुक्तक सुनिएगा जो जिन्हें पिताजी अक्सर मंचों से भी सुनाते थे, मैं सुनाता हूँ आपको, समर्पित करता हूँ धरोहर के इस समारोह में। सुनिएगा, दर्द सीने में उतर जाने दो, दर्द दर्द सीने में उतर जाने दो, रूप को और निखर जाने दो, घायल हो सके जितना घायल उस हद तक गुजर जाने दो, उस हद तक गुजर जाने दो। एक मुक्तक और सुनिएगा उनका, कोई मस्ती में रोज सोता है, कोई मस्ती में रोज सोता है, कोई दिन रात बोझ ढोता है, सरहदों पर तो मरे वो लेकिन फिर भी इनका ही नाम होता है, फिर भी इनका ही नाम होता है, फिर भी इनका ही नाम होता है। एक दोहा और सुनिएगा, मेरे भाई सत्यपाल सत्यम, उनका संदेश आया था कि मैं पिताजी की यादों के साथ जुड़ूंगा, वो सुन रहे हैं, मैं पारिवारिक मित्र हैं, पिताजी को बहुत आशीष सत्यम भाई को भी मिला है। मैं एक दोहा आपको और सुनाता हूँ, सुनिएगा एक मुक्तक, वो हसीन हैं तो हुआ करें, वो जो नाजनी हैं तो क्या करें, मेरी हसरतों का किया है खून, अब वो मेरे दिल से उतर गए। इस तरह की बात उन्होंने कही। मैं उनकी एक कविता जो मुझे बहुत पसंद है, मैं आपको सुनाता हूँ, पद तक ही सिमटी रह गई आज़ादी, कहा मेरे पिताश्री ब्रज शुक्ल घायल जी ने अपनी एक कविता में, कल तक थे औरों के आज हम अपनों के दास हुए, कल तक थे औरों के आज हम अपनों के दास हुए, हंसने की कोशिश में और भी उदास हुए, अपने थे लोग सभी उम्मीदें बांधी, पर बहरे निकले सब रहे केवल कुर्सी वादी, जन जन से दूर रहे नेता कहलाए, पद तक ही सिमटी रह गई आज़ादी, पद तक ही सिमटी रह गई आज़ादी। और अंत में उनकी चार पंक्तियां जो उनकी पहचान पंक्तियां थीं, उन्हें आप तक पहुंचाते हुए मैं अपने पूज्य पिताश्री की पावन पुनीत स्मृतियों को प्रणाम कर रहा हूं। पितृ पक्ष में आज दिन है जिस दिन सब पितृ विदा किए जाते हैं, और शिवो हमने ये कार्यक्रम आयोजित किया धरोहर का, तो मैं शिवो हम परिवार को भी, भावना जी को भी बधाई देता हूं, और उन तमाम लोगों को जो टेक्निकली इससे जुड़े हुए हैं, अमित जी को भी मैं शुभकामनाएँ देता हूँ। और अंतिम चार पंक्तियाँ सुनिएगा, इन कंधों ने अब तक जाने कितनी अर्थी ढोई हैं। यह पंक्तियां पिताजी की पहचान की कविताएं पूरी दुनिया में जानी जाती हैं, उनके जाने के बाद भी मैं निवेदित कर रहा हूं, और बहुत बहुत बधाई देते हुए शिवोहम साहित्यिक मंच को, ये एक ऐसा पावन पुनीत यज्ञ, भावना जी जो बहुत श्रेष्ठ कवित्री हैं, लेकिन मुझे लगता है वो जितनी श्रेष्ठ कवियत्री हैं उतना ही भावुक मन भी उनके पास है, और केवल उनके नाम में ही भावना नहीं लगा हुआ है, वो हृदय में एक संवेदना भावना रखती हैं, कि उन्होंने ये महसूस किया कि जितने भी हमारे बड़े रचनाकार हैं उनकी दूसरी पीढ़ी से जो कवि हैं उनसे उन्हें श्रद्धांजलि समर्पित करवाई जाए, और ऐसे रचनाकार जिनकी दूसरी पीढ़ी में कवि नहीं हैं उन्हें उनके अनुज रचनाकारों से श्रद्धांजलि समर्पित करवाई जाए। तो इस अनूठे विचार के लिए मैं शिवोहम साहित्यिक मंच को भी प्रणाम करता हूँ। अंतिम पंक्तियाँ पिताश्री की निवेदित करता हूँ। इन कंधों ने अब तक जाने कितनी अर्थी ढोई हैं, इस डोली में अब तक जाने कितनी दुल्हिन रोई हैं, यह भी लकड़ी वह भी लकड़ी अंतर केवल इतना है, इक्के सपने पूरे हो गए एक सपनों में खोई है, इक्के सपने पूरे हो गए एक सपनों में खोई है। मैं बहुत बहुत पूज्य पिताश्री की स्मृतियों को प्रणाम करता हूँ। और दोस्तों आज इस प्रश्न के माध्यम से भी यह बात दोहराना चाहता हूँ कि हमने पिताजी के सामने संकल्प लिया था कि हम उनके द्वारा स्थापित साहित्य प्रेमी मंडल को सदा आगे बढ़ाते रहेंगे। ये पौधा जो उन्होंने लगाया था, पितृपक्ष के दिन है और मेरे मित्र राजेश जी का एक वाक्य मेरे दिमाग में आज भी गूंजता है। उन्होंने कहा था कि प्रवीण जिस प्रकार से पिताजी के धन पर उनकी संपत्ति पर आने वाली पीढ़ी का बच्चों का अधिकार होता है, इसी प्रकार से उनके विचारों को उनकी साहित्यिक संस्थाओं को आगे बढ़ाना भी हमारा नैतिक धर्म है। पिताजी के देहांत के बाद से मैंने ये निर्णय लिया कि जो निराला श्री साहित्यिक समारोह हम करते हैं वो अनवरत चलेगा। पहले उसमें निराला श्री सम्मान राशि जैसा मैंने बताया पिताश्री देते थे अपनी तरफ से, अब वो राशि हमने 31,000 रुपये की राशि कर दी है 21,000 से बढ़ाकर। और मैंने ये संकल्प लिया है कि जब तक मैं शरीर इस धरती पर हूँ मैं पिताश्री की याद में ये समारोह आगे बढ़ाते हुए वो राशि हम एक रचनाकार को प्रदान करते रहेंगे और प्रवीण शुक्ल व्यक्तिगत रूप से उसे अपनी तरफ से उस रचनाकार को सम्मान राशि के रूप में प्रदान करेंगे। तो मैं पिताश्री की स्मृतियों को प्रणाम करता हूँ, आप सबको भी नमन करता हूँ और इस धरोहर के मंच से धरोहर के इस कार्यक्रम में तमाम इससे जुड़े हुए लोगों को प्रणाम करते हुए आप सबसे विदा लेता हूँ। पूज्य पिताश्री को मेरे शत शत नमन शत शत प्रणाम। भावना जी जुड़ गई हैं शायद, और भावना जी भी दो शब्द यदि कुछ कहना चाहें तो हम चाहेंगे कि भावना जी भी अपने दो शब्द हमारे सम्मुख प्रस्तुत कर दें। जी भावना जी, मेरा उद्बोधन लगभग पूर्ण हो गया है और मैंने जैसा बताया आपको शायद नेट की कोई समस्या आ रही है अभी इस समय पर। आ रही है आपकी आवाज भावना जी, आपकी आवाज आ रही है, स्वागत है आपका। जी भावना जी हम आपको सुन पा रहे हैं, स्वागत है आपका। भावना जी मैं आपको सुन पा रहा हूं, आपका बहुत बहुत अधिक स्वागत है। यदि आप अपने कुछ विचार प्रस्तुत करना चाहें तो आप प्रस्तुत कर सकती हैं। मैंने शिवोहम साहित्यिक मंच को भी आपको भी आप सबको अपने प्रणाम पहुंचा दिए हैं और जैसा मैंने बताया कि मेरे पूज्य पिताश्री जैसा होना तो असंभव है, शायद मैं भी ऐसा नहीं हो सकता इस मायावी युग में आज के इस दौर के चलते हुए, लेकिन ये अवश्य है कि मैं प्रयास करूंगा कि उनकी साहित्यिक सेवाओं को उनकी सामाजिक सेवाओं को हम निरंतर अनवरत आगे बढ़ाते रहें और साहित्य प्रेमी मंडल का ये रथ जिसके सारथी के रूप में बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं वो भी निरंतर इस विधा को और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे, ऐसी मैं कामना करता हूँ। भावना जी पुनः जुड़ी हैं, मैं चाहूंगा कि वो अपने दो शब्दों के साथ इस समारोह का विराम करें। स्वागत है भावना जी आपका।
जी पुनः आपको प्रणाम करती हूँ और शिवोहम साहित्यिक मंच के पटल पर आपने कीर्तिशेष दादा ब्रज शुक्ल घायल जी की स्मृतियों को साझा किया, उनकी रचनाओं को, उनके दोहे को साझा किया। हम बहुत बहुत आभारी हैं और निश्चित रूप से यह एक भावनात्मक कार्यक्रम रखा है और अधिकांश लोग जब भी यहाँ पर संस्मरण अपने साझा करते हैं तो वे बहुत भावुक हो जाते हैं। और जैसा कि आपने बताया कि उन्होंने कभी जीवन भर किसी से कुछ ये नहीं सोचा कि हमें भी ये सम्मान मिले, तो निश्चित रूप से जो देने का भाव जब व्यक्ति में होता है और उसको उसकी लत पड़ जाती है, मैं इसको यूं कहती हूँ कि जब देने की लत पड़ जाती है ना, तो चाहने की जो इच्छा होती है वो स्वतः कहीं विसर्जित हो जाती है। तो निश्चित रूप से ऐसे व्यक्तित्व के बारे में हम लोगों ने जो कुछ भी जाना और उनकी रचनाएं हम लोगों ने सुनी, हम बहुत धन्य हैं और आपके प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि आपने एक छोटे से निवेदन को पिताजी के लिए आपने हमारे पटल पर समय दिया। हम बहुत बहुत आभारी हैं और जितने भी मेरे श्रोता, जितने भी दर्शक यहाँ बंधु जुड़े हुए हैं, मैं बहुत सारे लोगों को, चूंकि मैं अभी पटल पर जुड़ी हुई थी, आदरणीय उर्मिला उर्मिजी उर्मिली जी, उर्मिला जी, डॉक्टर राजीव राज जी, भूमिका भूमि जी, अशोक वाजपेयी जी, बहुत प्रशांत उपाध्याय जी, तमाम ऐसे मेरे मित्र जुड़े हुए थे और वे हौसला अफजाई हमारी करते रहते हैं। निश्चित रूप से मैं उन सबके प्रति, जो जिनका नाम मैं नहीं ले पाई हूँ, उनके प्रति भी मैं बहुत बहुत विनम्र भाव से आभार व्यक्त करती हूँ। और एक सूचना और देना चाहती हूँ कि अभी थोड़ी देर में ही हमारे मध्य कीर्तिशेष गीतकार श्रद्धेय आत्म प्रकाश शुक्ल जी के संस्मरण और उनकी रचनाएं साझा करने के लिए, उन्हें शब्दांजलि अर्पित करने के लिए हमारे मध्य फरुखाबाद के साहित्यकार, जो पूरे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी ख्याति रखते हैं, डॉक्टर शिव ओम अंबर जी हमारे मध्य होंगे। तो कृपया उस आयोजन में भी आप लोग अपना थोड़ा सा समय चुरा करके यहाँ उपस्थित होइएगा और वह हमारे कार्यक्रम की अंतिम कड़ी होगी, क्योंकि आज पितृ विसर्जन है। तो इसके साथ ही हम इस आयोजन को भी विराम देंगे, फिर कुछ शुरू करेंगे। तो तब तक आदरणीय डॉक्टर प्रवीण शुक्ल जी, मैं आपके प्रति, हमारा पूरा शिवोहम साहित्यिक मंच आपके बारे में, आपके आपको पुनः पुनः आभार व्यक्त करता है। बहुत बहुत प्रणाम, बहुत
जी, मेरी
बहुत।
तरफ से भी इस पावन पुनीत यज्ञ को आयोजित करने के लिए शिवोहम परिवार को शुभकामनाएं।
बहुत अच्छा।